ओम शांति। अभी के सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगी इंदिरा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का हम स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप महाराष्ट्र गोंदिया से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपने लौकिक पढ़ाई में MSc इन मैथमेटिक्स की डिग्री प्राप्त की है और अलौकिक पढ़ाई में भी, जो अपने संस्था द्वारा वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी जो चलाया गया था, उसमें भी आपने MSc की डिग्री ली है। 1987 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1998 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। आरंभ के 5 वर्ष आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाले स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। 2001 में आपने ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित मनोबल एवं मनसा सेवा नामक पुस्तक लिखने के आप निमित्त बने, जिसका विमोचन स्वयं बाप दादा द्वारा करवाया गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक नागपुर एवं मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र पर रहकर आपने ईश्वरीय सेवाओं का अनुभव किया। 2009 से लगभग 14 वर्षों से आप स्थायी रूप से पांडव भवन ग्लोबल ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ देश विदेश से आने वाले विजिटर्स, डबल फॉरेनर्स, बी के भाई बहनों की सेवाओं में आप सदा उपस्थित रहते हैं। साथ साथ उनके लिए आयोजित होने वाले प्रोग्राम का आप कुशल कोऑर्डिनेशन करते हैं। आप एक कुशल राजयोग्या शिक्षिका है। शांतिवन हेडक्वार्टर के परिसर में चलने वाले शिविरों में आप सेशन लेते हो, भट्टियों में क्लासेस भी करवाते हो। आपने ज्ञान को बहुत सरल कर उनकी गहराई तक ले जाते हो, ताकि ब्राह्मण परिवार उसे सहज समझकर अपने जीवन में धारण कर सके। तो आज का विषय है देवराज इंद्र और देवी अहिल्या। तो इस विषय पर दीदी प्रकाश डालेंगे, आदरणीय इंदिरा दीदी जी। लेकिन इसके पहले एक थोड़ा अनाउंसमेंट। पीछे जो आगे आकर बैठ सकते हैं, जो पटरानी पटराजा बन सकते हो, तो प्लीज आगे आकर बैठी है, ताकि पीछे सीट खाली मिले। तो अभी आने वाले हैं, अभी तक क्लास फुल हुआ नहीं है, तो आगे जो बैठ सकते हैं तो कृपया आगे आके बैठिए।
ओम शांति। आज का जो टॉपिक है अभी का, देवराज इंद्र और देवी अहिल्या, और इसकी प्रेरणा आज और कल की मुरली है। कल की मुरली में बाबा ने इंद्र को याद किया, लेकिन बाबा ने इंद्र को किस रूप में याद किया कि दुनिया में मानते हैं कि मेघों के, बादलों के, वर्षा के इंद्र क्या है, देवता है। पर ऐसा कुछ है नहीं। सागर से पानी भाप के रूप में ऊपर चला जाता है, बादल बन जाते हैं और समय पाकर वो बादल बरसते हैं, पहाड़ों से मीठा पानी बरसता है। तो कल उस रूप में बाबा ने इंद्र को याद किया था, लेकिन भक्ति मार्ग में इंद्र के और भी यादगार हैं, और जिसमें कई बार कहते हैं इंद्र, जो देवराज इंद्र कहलाता है, उसने काफी छल किए हुए हैं। इस पानी की बात में भी आती है, छल तो नहीं कहेंगे, पर क्रोधित हुआ था। कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा था, जरूरत नहीं है पूजा करने की इंद्र की। लेकिन जब ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने पर नहीं की पूजा, इंद्र क्रोधित हुआ, खूब मूसलाधार वर्षा की। और फिर कृष्ण ने, क्योंकि उनके कहने पर हमने ऐसे किया, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और इंद्र के अहम को तोड़ा। इस रूप में है। कहने का तात्पर्य, इंद्र की बहुत सारी जो कहानियां हैं वो सारी निगेटिव कई बार आती है। तो वो इंद्र का रूप, और फिर आयुष बाबा ने कहा राम अर्थात परम पिता परमात्मा। क्लियर शब्दों में कहा, और कहा उस निराकार राम को ही, निराकार परम पिता को ही क्या कहते हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हैं। वही हमारा लिबरेटर है, वही हमारा गाइड है, और उसी को गाते हैं ओ पतित पावन। तो जरूर पतित हो तभी तो पतित पावन कहकर पुकारते हो। तो हम सभी जानते हैं इंद्र और अहिल्या की कहानी में यही आता है कि अहिल्या पतित हो गई और राम जो पतित पावन है, कहा जब तक चरण रज नहीं पड़ेगी तब तक तुमको इस पत्थर के रूप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये सब बातों को देखते हुए आज के इस टॉपिक की हमें प्रेरणा मिली, क्योंकि ये सारी बातें बाबा कहते हैं, जितनी भी कहानियां हैं वो सबका रेफरेंस कहाँ का है, संगम युग का। और हम इतने वर्षों से बाबा के ज्ञान को सुन रहे हैं और बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया हूँ, 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही तुम्हें देता हूँ। लेकिन इतने समय से ज्ञान सुनते हुए भी कभी हमने ये नहीं सुना कि स्वर्ग का राजा इंद्र है, सुना कभी? फिर ये देवराज इंद्र स्वर्ग का राजा बताते हैं। बाबा से तो हमने सदा यही सुना कि लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी होंगे और उसके बाद राम सीता बनेंगे महाराजा महारानी। इंद्र का तो कहीं भी बाबा ने जिक्र नहीं किया है। तो फिर जरूर ये इंद्र कोई और होगा और उसे ही हमें समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए हमने इस विषय को आज उठाया है। और वैसे एक तो ये हो गया इंद्र और अहिल्या भी, कोई गर्भ से पैदा हुई कोई पुत्री नहीं है, ब्रह्मा की मानस पुत्री है वो भी। हाँ, तो ये इंद्र का हो या अहिल्या को, ये कोई गर्भ से जन्मे पुरुष या स्त्री की बात तो ये है ही नहीं। तो अवश्य अगर इनको पुरुष और स्त्री के रूप में दिखाकर कहानी गढ़ी है तो इसके पीछे कोई रहस्य छिपा होगा, जिस रहस्य को हम जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा हमें अपने पुरुषार्थ में मदद मिलेगी। वैसे भी कहते भक्ति मार्ग में भी ये बात आती है, रामायण के अंदर आती है, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा जीवन में विवेक नहीं आता है, और जब तक विवेक नहीं आएगा जीवन में तो वैराग्य नहीं आएगा, और जब तक वैराग्य नहीं आएगा तो फिर मुक्ति भी नहीं आएगी। ये क्रम है पूरा। मुक्ति किससे? हम कहते हैं हमारा लक्ष्य है महसूसता द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करना, दूसरे शब्दों में बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप क्या बन गए? 16 कला संपूर्ण। और 16 कला संपूर्ण जब चांद होता है तो क्या होता है? उसका कोई अंश अंधेरे वाला नहीं होता है, यही हुआ ना। तो अगर हम कहते हैं कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है अर्थात अंधेरे से कंप्लीट मुक्त होना है, और अंधेरे से कंप्लीट मुक्त होना है मना अज्ञानता से मुक्त होना है, और अज्ञानता से मुक्त होना है मतलब अज्ञानता के वश जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि आदि मायावी जो अवगुण हमारे चित्त में बैठे हुए हैं उन सब से मुक्ति मिल जाए। संपन्न बनने का यही अर्थ होता है। चंद्रमा जिस दिन संपन्न है, कोई हिस्सा उसका अंधकार में नहीं है, पूरे गोलाकार चंद्रमा में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। और उसका ये अर्थ है अंधकार से मुक्त। और यहां जीवन में है कि आत्मा अज्ञान के अंधकार से कंप्लीट मुक्त हो जाए। अज्ञानता के वश जो आत्मा पर इन इन विकारों का लेप छेप चढ़ गया है, वो सारे लेप छेप उतर जाए। जैसे ये साड़ी अगर सुबह में धुली हुई पहनी है तो मैल का कोई इस पर लेप नहीं, किस घड़ी, जिस घड़ी पहना। लेकिन एक बार पहन लिया, अब उसके बाद इस पे मैल की लेयर चढ़ना, धूली कण डस्ट आदि चढ़ना आरंभ हो गया। हो सकता है कि वो धूली कण अभी इतने माइन्यूट है कि मेरे आंखों को वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, परंतु चढ़ना तो आरंभ हो गए हैं। वो कब दिखेंगे, जब मेरे आंखों की कैपेसिटी है कि इतना छोटा दिखता है, उससे ज्यादा छोटा नहीं दिखता है। तो मेरे आंखों के दिखने की कैपेसिटी के अंदर आ जाएगा तो दिखने लगेगा कि हाँ लेप शेप आया है, अन्यथा लेप शेप चढ़ भी रहा है पर दिखता नहीं है। ठीक ऐसे ही आत्मा ने भी परमधाम से यहां आकर जब यात्रा आरंभ की, उसी समय से आत्मा जो आई थी 100% चार्ज, तो अब 100% चार्ज रह जाएगी क्या? उसी क्षण उसका 100 में से कुछ अंश तो माइनस हो जाता है। अब लेप छेप कब चढ़ता है? तो जैसे आप एक दिया जलाओ, दिया चार स्टेजेस से गुजरता है। मिट्टी का दिया, उसमें तेल, उसमें बाती, बाती को तेल में ठीक से डीप किया है, वापस प्रॉपर हाइट पे रखा है, अब माचिस की तीली से उसको जलाया। तो उस घड़ी जिस घड़ी जलाया, दिए की जो अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस समय दिया 100% उजाला दे रहा है। कितना? 100%। लेकिन अगले ही घड़ी 100 से कम हो गया, लेकिन चूंकि वो मेरे आंखों की कैपेसिटी नहीं है उतनी कि उतने माइनर अंतर को मैं देख सकूं, और इसलिए मुझे लगता है अभी उतना ही है। लेकिन वो तब माइनर डिफरेंस जब दिखता है तब तक काफी कम होता है। और यही कारण है कि हमारे पास जो देवी देवताएं हैं, या तो वो 16 कला वाले हैं या 14 कला वाले हैं, 15 कला वाले का गायन ही नहीं है। जबकि 16 से नीचे उतरेगा तो 15 पे ठहरेगा ना पहले तो, पर क्यों नहीं है उसका गायन? क्योंकि वो विजिबिलिटी नहीं है उस समय। जब विजिबल हुआ कि कला गिर गई है, तब दो गिर गई थी। जैसे दिए का प्रकाश जिस घड़ी जलाया उस घड़ी 100%, लेकिन अगले ही पल 100% नहीं है। पर वो जितना भी कम हो दिखाई नहीं देता, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन जिस घड़ी मुझे समझ में आता है तब तक काफी कम हो गया है। तो वो दिए की दूसरी अवस्था है, जहां मुझे महसूस होता है कि जिस समय जलाया था उस समय जो उजाला था और ये उजाले में अब फर्क है। तो ये दो स्टेज समझ में आई। तीसरी स्टेज दिए की वो होती है जहां दिए का प्रकाश और कम हो रहा है, लेकिन अब दिए में से थोड़ा सा स्मोक, धुआं निकलना भी आरंभ हो गया है। और चौथी स्टेज थी कि वो होती है कि जहां दिया नाम मात्र के लिए प्रकाश दे रहा है और पूरा कालिमा से घिर गया है और पूरी कालिमा फेंक रहा है। ये चार स्टेज होती है दिए की। तो शुरू के दो स्टेज में उसका प्रकाश जरूर कम हो रहा है, पर उसके चारों तरफ कालिमा की कोई लेयर जो दिख सके ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तीसरी स्टेज से आरंभ होता है और चौथी स्टेज में तो वो सिर्फ लेप ही दिख रहा है, ज्योति तो इतनी सी दिख रही है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आत्मा जब ऊपर से नीचे उतरती है, पहली स्टेज सतयुग वाली और दूसरी स्टेज त्रेता वाली। ये 14 कला हो गए, तो 15 कला का नाम ही नहीं है। और फिर द्वापर में आ गए तो चूंकि धुआं आ गया, धुएं के अंदर वो ज्योति दिखती है अभी, तो अभी देवता कैसे बोलेंगे, क्योंकि लाइट थोड़ी दे रहा है, सिर्फ धुआं दे रहा है। धुआं देने वाले को देवता बोले तो कैसे बोले, इसलिए देवता नाम ही उड़ गया। हाँ, देवता नाम ही उड़ गया, लेकिन हमारे अंदर वो रावण वाले गुण आने शुरू हो गए। धुआं आना माना बॉडी कॉन्शियस हो गए हम। और फिर चौथी स्टेज कलयुग के अंत वाली, कि जहां नाम मात्र के लिए हमारे साथ क्वालिटीज कभी कभी नजर आती है, अन्यथा तो रावण वाली क्वालिटी का ही दर्शन होता है। ये हमारी आत्मा की चार स्टेजेस। तो परमात्मा हमें इस चौथी स्टेज में आकर मिलता है और वो हमें आते ही कहता है, बच्चों मैं तुम्हें आते ही दो गिफ्ट देता हूं। कौन सी गिफ्ट देता हूं? तो कहा, एक दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि। क्या है दिव्य नेत्र? कि इन आंखों से तो सिर्फ देह दिखता है, और वो तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र दिखता है जिसे इस देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा को देखो, वो दिव्य नेत्र। कि तुम देह नहीं हो, लेकिन देह के भीतर इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा जो विराजमान है, अब उस पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। और इतना ही नहीं, अब संबंध संपर्क में भी जब आते हो तो सामने वाले की भी देह पर नहीं दृष्टि हो, उस आत्मा पर दृष्टि हो, जिसको ही कहा आत्मिक दृष्टि का पाठ पढ़ाया दिव्य नेत्र देकर, और का दिव्य बुद्धि दिया। और दिव्य बुद्धि माना ही दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान माना सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं कि आत्मा ज्योति बिंदु होती, लेकिन पूरी सच्चाई, आत्मा कहाँ की रहने वाली, कैसी, यहाँ क्यों आई है, किसकी है। और सिर्फ आत्मा का नहीं, परमात्मा का भी पूरा नॉलेज। और इतना ही नहीं, कर्मों का भी पूरा नॉलेज, साइकिल का भी पूरा नॉलेज, सब कुछ जो ज्ञान दिया वो है दिव्य ज्ञान। लेकिन जब तक दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है, तब तक कौन सा ज्ञान भरा पड़ा है बुद्धि में? भौतिकता वाला ज्ञान, भौतिकता वाला ज्ञान। और भौतिकता वाला ज्ञान माना भौतिक जगत का ज्ञान, इस भौतिक शरीर का ज्ञान, भौतिक जगत की हर वस्तु का ज्ञान। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो कुछ भी पढ़ते हैं, क्या उसमें स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं? भौतिक जगत में कौन होकर गए हैं, भौतिक जगत में क्या क्या वस्तुएं पाई जाती हैं, भौतिक जगत में इन वस्तुओं के बीच में कौन से लॉ काम करते हैं, यही तो पढ़ रहे हैं ना? सारा तो भौतिक पढ़ रहे हैं। चाहे फिर हिस्ट्री पढ़ ले, चाहे ज्योग्राफी पढ़ ले, चाहे केमिस्ट्री पढ़ ले, चाहे फिजिक्स पढ़ ले, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ ले, ये सारी तो भौतिक जगत की बातें हैं ना। तो हमारे जब तक बाबा का ज्ञान हमारे बुद्धि में नहीं है, तो हमारी बुद्धि में मटेरियलिस्टिक नॉलेज, इस भौतिक जीवन का ही सिर्फ नॉलेज भरा पड़ा है। और अगर मेरी बुद्धि में भौतिकवादिता का ज्ञान भरा पड़ा है, और ऐसे में जब दिव्य ज्ञान मेरे जीवन में आ गया, लेकिन भौतिकता का ज्ञान कब से भरा पड़ा है? जन्मों जन्मों से। तो कई बार वो क्या हो जाता है, भले दिव्य ज्ञान मिल चुका है, लेकिन उस पर हावी हो जाता है कि उसके सामने दिव्य ज्ञान जो मिला हुआ है वो भी साइड में रह जाता है। और इसलिए कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्माना परमात्मा, कि जब तक उस परमात्मा का, उस ईश्वर का हमें संग नहीं मिलेगा, विवेक हमें नहीं मिल सकता, अर्थात दिव्य ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। जीवन में नाशवान क्या है और सत्य क्या है, इसके बीच में हमें कोई अंतर नहीं। शरीर नाशवान और नित्य है आत्मा, लेकिन शरीर और आत्मा को ऐसे कर दिया, और ऐसे करके पूरा ही समझ लिया शरीर है। तो नाशवान पर ही सारी बुद्धि टिकी हुई है हमारी, है ना। और इसलिए कहा कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, विवेक नहीं जगेगा। लेकिन फिर बाबा आए, संग मिला, ज्ञान मिला, विवेक जगा कि आज दिन तक मैं इसको मैं बोलती थी, अब भगवान का ज्ञान कहता है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है, लेकिन इसको चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, वो मैं हूं। और फिर दूसरा कहा कि जब विवेक जगेगा तो वैराग्य आएगा। और वैराग्य का मतलब, वैराग्य का मतलब, जो चीज नाशवान है, जो चीज मेरे आगे की जर्नी में साथ चलने वाली नहीं है, उसके प्रति इस विवेक के अभाव में जो बहुत ज्यादा लगाव है, झुकाव है, अनुराग है, वो राग उसके प्रति अब खत्म होकर वही वाला राग अब किस में लग जाए, स्वयं के सत्य स्वरूप के प्रति, स्वयं के सत्य पिता परमात्मा के प्रति, इस जीवन के सत्य कार्मिक फिलॉसफी जो है, जो संसार का चक्र है, वो जो ज्ञान है, उसके प्रति मेरा विशेष अनुराग, जो नाशवान है वहां से अभी राग उठ जाए, इसको कहेंगे वैराग्य। और वही बाबा हमेशा कहते, जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी, तब तक बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। तो कई बार लोगों को प्रश्न रहता है, होता क्या है वैराग्य, होता क्या है वैराग्य वृत्ति? क्लियर हुआ क्या होता है वैराग्य? और फिर तीसरा कहा, जब सचमुच वैराग्य आएगा, तो फिर वो चीजें जो बंधनकारी है, उनसे मुक्ति मिलेगी। हमारे ब्राह्मण जीवन में मुझे जो संपूर्णता की ओर बढ़ना है, मुझे जो बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, कौन सी बातें बंधनकारी है? यही मायावी संस्कार। ज्ञान में चलते चलते, स्वयं को याद दिलाते दिलाते, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, याद दिलाते दिलाते शांति से अशांति खड़ी कर देती हूं। अपने को प्रेम स्वरूप याद दिलाते दिलाते गुस्सा नफरत कर बैठती हूँ। परिस्थिति आती है, अपने को याद दिलाती हूँ मैं शक्ति स्वरूप हूँ, और परिस्थिति आई नहीं भीतर से टूट जाती हूँ। तो ये बंधनकारी है ना हमारे संस्कार जो इतनी गहरी जड़ें जमा कर बैठे हैं कि समझ सब कुछ है लेकिन हावी वो हो जाते हैं। पकड़ा है सर्वशक्तिवान का साथ लेकिन फिर भी वो हावी नहीं होकर मायावी संस्कार ही हावी हो जाते। तो मुक्ति किससे? इन मायावी संस्कारों से, मायावी भावों से। भाव भी कहते हैं, कोई कहता है इसमें क्रोध का संस्कार, कोई कहता है इसमें क्रोध का भाव है। तभी तो बोलते हैं ना, जब क्रोध का भाव जगता है तो संस्कार और भाव एक ही चीज है, लेकिन प्रसंग के अनुसार कभी संस्कार शब्द यूज होता है और कभी भाव शब्द यूज होता है। और इसीलिए कहा गया है कि कर्म से पहले विचार और विचार से भी पहले भाव। और ये चेक करो कि मैंने जो ये कर्म किया इसके पीछे का विचार नहीं, विचार के भी पीछे भाव क्या था, इंटेंशन क्या थी। और वो भाव कैसे उठता है? विचार तो क्लियर बताते कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, लेकिन भाव को क्लियर बोलेंगे क्या? सिर्फ बोलेंगे अंदर में एक भाव उठा। क्या होता है ये भाव उठना? आप देखो, छोटा सा जैसे अभी नक्की लेक है, इसका तो फिर भी बहुत गहराई है, लेकिन कम गहरा कोई पॉन्ड होता है ना, तालाब होता है समझो। तो जहां पर धरती है, आखिर तो धरती होगी ना नीचे, नहीं तो अगर पृथ्वी गोलाकार है और नीचे धरती नहीं है तो ऊपर से नीचे पानी बहता रहेगा क्योंकि स्पेस में लटक रही है ना धरती तो। हाँ, और अगर ये नीचे धरती नहीं होती तो नदियों पे जो पुल निर्माण होता है वो कभी नहीं हो सकता, सागरों पे जो पुल निर्माण हो रहे वो कभी नहीं हो सकते। कहीं तो धरती है नीचे, कहीं तो तला है नीचे। तो जहां तले पर मिट्टी है और फिर चूंकि वो तालाब है, चूंकि वो नदी है, चूंकि वो सागर है, पानी है, तो जहां मिट्टी और पानी का कांटेक्ट है वहां पर कोई हवा चली जाए तो वो बुदबुदे का रूप लेगा पानी। समझ में आ रही बात? और वो बुदबुदा एकदम छोटा रहेगा, वो बुदबुदा छोटा रहेगा, लेकिन चूंकि हवा गई है जिसने ही उसको बुदबुदे का रूप दिया है, अब वो बुदबुदा वहां से उठेगा, ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा। और जैसे जैसे ऊपर चलेगा, बुदबुदे की जो साइज इतनी थी एक्सपांड होगी, क्योंकि जितना ऊपर आते जा रहा है उतना उसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम होते जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, और जो जो ऊपर आएगा त्यों तो उसकी साइज और आके पानी के सतह पे दिखेगा। समझ में आई? तो जो पानी के सतह पे दिख जाता है ये है हमारे कर्म जो दिख जाते हैं। अरे मैंने कल उसको देखा, इतना क्रोध में लाल पीला होके बोल रहा था, दिखा, प्रैक्टिकल में दिखा, लेकिन अभी जो रास्ते में ही था लेकिन बड़ा बड़ा होते जा रहा था वो था विचार। अंदर में चलते रहते हैं ना विचार, इसको मैं जब तक बोलूंगा नहीं ना इसकी मस्ती नहीं उतरने वाली है। तो अंदर में विचार चल रहे हैं, लेकिन वो विचार से भी पहले क्या उठा था? क्योंकि उसको देखते कि मुझे गुस्सा आ रहा है और उस वो क्रोध का भाव उठा, फिर वहां से उसने विचार का रूप लिया और वहां से उसने फिर कर्म का रूप लिया। तो आत्मा जब पहले ऊपर से नीचे आई थी तो आत्मा सात गुण रेडिएट करती है, जो भी सात क्वालिटी हमें बताई गई है। तो हमारा जो चित्त माना, ये शरीर है हमारा, और इसके भीतर कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर आत्मा है ना, यही पढ़ा ना मिथक के ज्ञान में। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर से घिर जाती है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से घिरा रहता है, और सूक्ष्म शरीर माना ही मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना। तो आत्मा जब नीचे आती है, देह धारण करती है, तो आत्मा जो कि ज्योति है, उसका प्रकाश अब फैल रहा है। तो किसको लगेगा पहले, सबसे पहले किसको मिलेगा पहले? वो एक बल्ब है समझो, बल्ब के अंदर फिलामेंट जलता है, जब स्विच ऑन करेंगे तो जलेगा कौन? प्रकाश कौन देगा? फिलामेंट प्रकाशित होगा, लेकिन फिलामेंट कांच के कवर के अंदर है। तो वो जो फिलामेंट प्रकाशित हुआ, उसके प्रकाश की किरणें आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है यात्रा करना, गमन करना, और उसके रास्ते में आ गया कांच, तो उसको भेद कर भी वो कब बाहर आता है? अगर कांच क्रिस्टल क्लियर क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, तो ही उसका प्रकाश उसी मात्रा में आएगा जिस मात्रा में फिलामेंट प्रकाशित है। लेकिन अब ये जो बल्ब है, जो कांच है, रोज यूज हो रहा है, तो जैसे इस पर भी रोज धूल मिट्टी चढ़ती है, उस पर भी चढ़ेगी या नहीं? इसीलिए तो घर की डस्टिंग रोज करनी होती है, हर सामान पे भी तो धूल मिट्टी चढ़ रही है ना, अब उस कांच पे भी चढ़ रही है। काफी दिन हो गए हमने डस्टिंग किया ही नहीं उसका, और विशेष करके वो बल्ब उस जगह लगा है किचन में जहां खूब छौंक लगते हैं, खूब तड़के लगते हैं, खूब भजिया तले जाते हैं, खूब कुकरों की सीटियां फुर करके पानी बहता रहता है, उड़ते रहता है, वो सब चिकनाई पानी सब कुछ उधर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? और उसमें भी बहुत दिन तक ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा उस पे? एक दिन आएगा उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? और आप अपने विजिटिंग रूम से उठकर आएंगे, चलो अभी टाइम हो गया है किचन में काम कर लेते हैं, अभी थोड़ा लाइट जलाया, चलने नहीं हो रहा है, हाँ लाइट चली गई है क्या? नहीं, अभी तो विजिटिंग रूम में बैठी थी, दोबारा रीचेक करने जाती हूँ, लाइट तो चालू है, इधर क्या हो गया? हाँ बल्ब फ्यूज हो गया होगा, चलो दूसरा लगा देते हैं। अभी दूसरा लगा दे तो चढ़ना पड़ेगा ना उतारने के लिए, जैसे ही हाथ लगा क्या है, पूरा हाथ में चिपक जाए, और अगर कुछ हिस्सा जो उसमें था वहां से टोटल उखड़ के आपके हाथ में आ गया और उतना हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो गया, प्रकाश दिखेगा वहां से आपको? और अगर पूरा निकाल देंगे तो? पूरा निकाल देंगे तो जितना फिलामेंट से आ रहा उतना ही वापस आने लगेगा। तो ये जो बाहर लेयर चढ़ गई थी, उस लेयर के नीचे मतलब कांच के ऊपर चढ़ी है ना लेयर, तो कांच की सतह पे तो अभी भी वो रोशनी है ना, समझ में आ रही? ये लेयर अलग चीज है पर सतह पे रोशनी अभी भी है, क्यों? क्योंकि अंदर फिलामेंट जल रहा है और वो यहां तक पहुंच चुका है। ऐसे ही आत्मा जब परम धाम से आती है, 100% चार्ज चित्त रूपी कांच में वो अपना पूरा प्रकाश फैला देती है, सातों गुण फैला देती है उसको हम कहते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार, हमारे ओरिजिनल भाव। कौन से हमारे ओरिजिनल भाव? प्रेम का भाव, शांति का भाव, आनंद का भाव, खुशी का भाव, ज्ञान का भाव। क्योंकि परमात्मा की संतान हूं मैं, परमात्मा करुणा का सागर है, जो आनंद में होगा उसमें करुणा अपने आप जाग जाती है। करुणा का भाव, रहम का भाव, और बाबा वही कहते हैं रहम दिल बनो। कहते करुणा जागृत करो। पिछला वर्ष हमने कौन सा मनाया था? करुणा उसका मुख्य अंश था। तो कहां से आएगी करुणा? कहीं से उधार नहीं लानी है। वो मेरे चित्त रूपी कांच पे आत्मा ने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन उस इंस्टॉलेशन के ऊपर द छोंक वाली लेयर आई है। समझ में आ रही? तो जो मुक्ति की बात है, किससे मुक्ति? ये जो छोंक वाली लेयर चढ़ी है ना, और छोंक यहां पे मतलब है बॉडी कॉन्शियसनेस आने के बाद जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जागा है, वो जाके इसके ऊपर चिपके हैं। और इससे मुक्ति, मेरे ओरिजिनल से मुक्त नहीं हो सकती मैं कभी। अगर मैं ओरिजिनल से भी मुक्त हो गई तो मेरे ओरिजिनल गुण कहलाएंगे ही नहीं। जैसे हम कहते पानी का गुण धर्म है शीतलता, आप कभी शीतलता पानी से निकाल सकते हो? उसको ढक सकते हो कैसे? नीचे से गर्मी देकर, लेकिन गर्मी हटाओ शीतलता वही है, शीतलता वही है। सूर्य जिसका गुणधर्म है गर्मी देना, प्रकाश देना, छीन सकते हो उसकी गर्मी को? छीन सकते हो उसके प्रकाश को? नहीं। हाँ, बादल उसके रास्ते में खड़े हो जाए तो मुझे गर्मी और प्रकाश का अनुभव नहीं हो, दूसरी बात है, पर उसे छीना किसी ने नहीं अभी तक, अभी भी उसी के पास है। बस वो रास्ता, जिस रास्ते से वो पास होकर हमारे तक पहुंचती है, उस रास्ते में सिर्फ बादल है। उन बादलों को हटा दो, सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी हमें मिल जाएगी। तो जो मुक्ति की बात आती है, किससे मुक्ति? समझ में आ रही है? इससे मुक्ति। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक वैराग्य न हुई, और बिना वैराग्य के मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब मुक्ति नहीं मिलेगी इनसे, तो बाप समान कैसे बनेंगे? बाप समान नहीं बन सकते हैं। संपन्न और संपूर्ण, मैं ऑलरेडी संपन्न संपूर्ण हूं, लेकिन बाहर का आवरण उसको ढके हुए है। इसलिए ज्यादा काम किस पर करना है? जो है चढ़ा हुआ उसको निकालने का। और इसीलिए एक शिल्पकार भी एक पत्थर के टुकड़े से जब मूर्ति बनाता है तो उसमें डालता नहीं है कुछ, उसमें से निकालता है। मूर्ति तो पत्थर में पहले से है। ऐसे हमारा और इसीलिए मुरलियों में कई बार पढ़ते हैं कि बच्चे तुम्हारा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप इंतजार कर रहा है। तो लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं ब्राह्मण बच्चों में, कहां मेरा संपूर्ण स्वरूप इंतजार कर रहा है? समझ में आ रहा है? मेरा संपन्न स्वरूप वो इंतजार कर रहा है, इसको हटाओ यहां से। ये कालिख जो चढ़ा के रखे, बस इसको हटाओ तो मैं यूं प्रत्यक्ष हूं तुम्हारे सामने। तो ये हटाने की जो बात है, वहीं पे ये समझ में आएंगी अभी एक कहानी, देवराज इंद्र और देवी अहिल्या। तो कहानी ऐसी है कि अहिल्या देवी माना ही, किस कारण से देवी नाम है उसका? डिविनिटी से भरपूर है वो, क्योंकि ब्रह्मा की मानस पुत्री है ना। यहाँ पे भी शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान आते ही जो दिया, तो कहा आते ही मैंने तुमको दो गिफ्ट दी। चाहे नेत्र दिया चाहे बुद्धि दी, दोनों में पहले क्या जुड़ा हुआ है? दिव्य। तो डिविनिटी देवी अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री है, अर्थात दिव्यता से भरपूर है। और बताते उसका विवाह किसके साथ कराया? किसके साथ कराया? गौतम ऋषि के साथ। अब गौतम शब्द का अर्थ क्या होता है? गौतम शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसे ज्ञान प्राप्त हो, जो अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो। इसीलिए तो कहा गया गौतम बुद्ध। कब कहा गया? जब वो अंधकार से मुक्त हुआ, जब उसे एनलाइटनमेंट हुई, तब तो टाइटल आया गौतम बुद्ध, वरना तो सिद्धार्थ था, राजा का बेटा। राजा का बेटा था ना, वो टाइटल उसको थोड़ी था पहले। तो जब एनलाइटनमेंट आ गई, अर्थात अज्ञानता से मुक्त हो गया जब, तो गौतम ऋषि से शादी कराने का मतलब क्या होता है? और ऋषि माना संयमित जीवन, ऋषि माना तपस्वी जीवन, ऋषि माना योगी पवित्र जीवन। तो जब कहा गौतम ऋषि, तो ये कौन है गौतम ऋषि? हमारी जो 7 क्वालिटी से आत्मा की, जिसमें एक क्वालिटी है बच्चे तुम आत्माएं ज्ञान स्वरूप हो। तो मेरा ज्ञान स्वरूप होना ही मैं गौतम हुई ना फिर। समझ में आ रहा है? गौतम वही विवेक हुआ ना, वही तो विवेक हुआ। विवेक माना ही क्या? क्या नाशवान है, क्या बिना नाशवान है, उन सब का ज्ञान होना, उसको विवेक कहते हैं। तो ज्ञान स्वरूप माना क्या? ये सारा ज्ञान हमारे भीतर भरा पड़ा है, लेकिन चूंकि भूल गए हैं, तो हमको लगा हमारे पास ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान आके क्या करता है? ज्ञान डालता थोड़ी हमारे अंदर। ज्ञान को हमें सामने परोस के हमारी खोई हुई स्मृतियों को जगा देता है। वरना अगर हमारे भीतर नहीं होना ये ज्ञान, कोई कितना भी कहे हमें एक्सेप्टेड ही नहीं होगा। आज कितने लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि सृष्टि पे कोई एक समय था जब सिर्फ और सिर्फ सुख था, दुख नाम की चीज नहीं थी। कौन सी वो आत्मा है जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है? जिन्होंने सतयुग त्रेता में जन्म ही नहीं लिया, तो उनके पास मेमोरी सी नहीं है। वो आए सीधा द्वापर में है, और द्वापर में आए तो आते ही सुख और दुख दोनों देखा था, और इसलिए उनको लाख समझाओ कि भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि पर एक ऐसा समय था कि जब दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। भारत सोने की चिड़िया उसी का तो गायन है, परंतु वो एक तरफ भारत सोने की चिड़िया भी गाएंगे, पर ये कहेंगे ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि स्मृति नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और हम लोगों को स्मृतियां है, भूल चुके हैं, सो गई है, लेकिन जब आके जगाया एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो जाती है हमें। तो गौतम ऋषि कोई और नहीं है, ये हमारा ज्ञान स्वरूप होना ही गौतम ऋषि है। ये ज्ञान ही तो हमें बोलेगा ना कि अभी तपस्वी जीवन जियो, संयमित जीवन जीना है, योगी पवित्र जीवन जीना है। और कहा कि गौतम ऋषि से अहिल्या की शादी, शादी माना गठबंधन कि अब तुम्हें साथ साथ रहना है। और तो ये अहिल्या कौन है? बुद्धि। तभी कहा ना आते ही क्या देता हूं तुम्हें? दिव्य बुद्धि। बुद्धि को क्या कर देता है वो? डिवाइन। और अहिल्या शब्द का अर्थ क्या होता है? जो किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं। अहिल्या, अ जो हिले नहीं, अहिल्या। तो ऐसी डिविनिटी वाली बुद्धि की गठबंधन विवाह किसके साथ है? गौतम ऋषि के साथ है। और कहते हैं इन दोनों ने खूब वर्षों तक एक बहुत सुंदर दाम्पत्य जीवन जिया आश्रम में, क्योंकि ऋषि नाम है, संयमित जीवन है, तपस्वी जीवन है, तो का आश्रम में रहकर वर्षों तक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जिया। उनके आश्रम में खुशहाली थी, हरियाली थी। लेकिन फिर एक समय आया, वो बताते हैं ना कि राम लखन को विश्वामित्र लेके गए, तो उस रास्ते से मिथिलापुरी जाना था। पहले तो महल से लेके गए, भाई निशाचर हमें बहुत तंग करते, यज्ञ नहीं करने देते हैं, हमें ये अपने लाल दो। तो लेके गए तो पहले ताड़का वध किया है, फिर अहिल्या उद्धार किया है। तो अहिल्या उद्धार कब करेंगे, जब उस स्थान तक पहुंचेंगे। तो वनों में पहले जाके ताड़का का उद्धार किया है। ताड़का का उद्धार मना ही क्या, हमारी बुरी प्रवृत्तियों का, और उसका उद्धार नहीं किया है। देखो शब्द देखो, ताड़का भी स्त्री रूप में है, अहिल्या भी स्त्री रूप में, सीता भी स्त्री रूप में है, लेकिन ताड़का का वध है, अहिल्या का उद्धार है, सीता का वरण है। ये हमारे भीतर की बात है। वन में लेके जाना माना भीतर जाना, भीतर जाना। उन्होंने भी अध्ययन कर लिया था, तो हमने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। भट्टी में बैठना माना अंदर जाना, भट्टी में बैठना माना अपने भीतर जाना। गुरु साथ में है अर्थात ज्ञान, और इसीलिए भट्टी में ज्ञान भी क्यों सुनाया जा रहा है, ये ज्ञान के आधार से तो भीतर चेकिंग करोगे। गुरु साथ में थे इसलिए विश्वामित्र, और वो लेकर गए। और उसमें भी बताया कि पहले ताड़का को नहीं मारा, पहले सुबाहु और मारीच को मारा, वो ताड़का के पुत्र हैं, उसकी जनरेशन को ही खत्म कर दो, और फिर ताड़का को भी मारा है। पहले ताड़का को मारा फिर सुबाहु, क्योंकि जो जननी है उसको ही मार दो ना पहले, तो न रहेगी जननी न क्रिएशन होगा। तो कहा पहले ताड़का का वध किया, अगर पहले सुबाहु मारीच का वध कर भी ले वो दूसरे पैदा कर डालेगी, तो ताड़का का वध कर डाला। अर्थात बुरी प्रवृत्तियों का, अंदर में जाओ देखो क्या बुरा ख्याल चल रहा है, इनको खत्म करो। और फिर चले आगे तो इनका आश्रम आया, और उस आश्रम को देखते ही उन्होंने गुरुवर से पूछा, ये कैसा स्थान है, न तो पूरा निर्जन है और न ही पूरा बसा हुआ है, ये किस प्रकार का स्थान है। प्रश्न करने पर विश्वामित्र फिर पूरा वाक्य सुना देते हैं, कैसा, क्योंकि वहां का सारे पेड़ सूख गए लेकिन तुलसी अभी भी हरी भरी है वहां पे। तो कहा कि यहां पे गौतम ऋषि और देवी अहिल्या वर्षों तक बहुत सुख से दाम्पत्य जीवन जीते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ऋषि चले गए अपने नित्य स्नान के लिए गंगा जी में, पीछे इंद्र आया मुनि का वेश धारण करके, मुनि का स्वर लेके, और अहिल्या के साथ कुकर्म कर बैठा। और जब कुकर्म कर बैठा तब तक वो गौतम ऋषि लौट कर आया, और उसने देखा, मतलब रंगे हाथ उसने पकड़ लिया और दोनों को श्राप दिया। इंद्र को श्राप दिया कि क्या श्राप दिया, जिस काम वासना में तुम ऐसे पागल हुए हो तो जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में योनियां हो जाए। लेकिन फिर उसको गलती का रियलाइजेशन हुआ, कहा इत क्योंकि दिखाने के लायक नहीं रहेगा कहीं पे अपने आप को, तो उससे जब क्षमा मांगी तो कहा ये योनिया किसमें बदल जाएगी, आंख में, और इसीलिए इंद्र को कहते हैं सहस्त्र आंखों वाला इंद्र। और इस अहिल्या को भी, उसको भी श्राप दिया कि जा तू क्या हो जा, जड़वत, जड़ हो जा नहीं, जड़वत हो जा, शिलावत हो जा, शिला नहीं बाकायदा शिला, कोई ऐसे हो जाता है क्या पत्थर शिला, तो शिलावत हो जा, जड़वत हो जा का मतलब क्या है और कौन? अहिल्या और ऋषि तो मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। देवराज इंद्र कौन है? ये इंद्रियां सारा डेटा किसके पास लेके जाती है? मन के पास। तो जो देने वाला होता है, इंद्रियां दे रही है ना, और उनका फिर ये राजा, तो देवराज इंद्र नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? इंद्रियों का तो राजा हुआ ना, और उसको सारा डेटा ये दे रही, और फिर ये देवराज इंद्र बुद्धि को डेटा देगा ना, यही तो बता रहे ना, मन बुद्धि संस्कार की मन में विचार आएंगे, बुद्धि को सबमिट किया जाएगा, क्योंकि मन के पास साइन करने की अथॉरिटी नहीं है कि ये साइन कर दे कि यही करना है करके, वो साइन करने की अथॉरिटी किसके पास है? डिसीजन लेने की अथॉरिटी बुद्धि के पास है, तो बुद्धि को सबमिट करता है फिर वो। तो देवराज इंद्र कौन है, क्लियर हुआ? तो हम दो युगों तक, कहां काफी वर्षों तक दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी से चला, तो दो युगों तक हमारी बुद्धि विवेक के अनुसार, कहा ना दो युगों तक हम सोल कॉन्शियस होते हैं, तो दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा चला ना दो युगों तक, लेकिन बाद में इंद्र की प्रवेशता हो गई, क्योंकि वो दो युगों तक भले मन अंडर में था बुद्धि के, लेकिन भौतिक, आखिर सतयुग बीत रहता भी भौतिक पदार्थों से ही तो भरपूर है, पर सोल कॉन्शियस थे, पर भौतिक जगत का डेटा तो बहुत जा रहा है ना अंदर, वो जाते जाते सोल कॉन्शियस जब जीरो हो गई तो वो हावी हो गया, मन बलवान हो गया, देवराज इंद्र बलवान हो गया, और वो देख रहा था दो युगों से कि ये बुद्धि, क्योंकि बुद्धि उसके ऊपर है, पर ये तो क्या चाहता है कि मेरे फेवर में हो जाए, ये कभी दुनियावी वस्तु में मैं इतना डेटा लाकर देता हूं, पर इसमें इसका मन ही नहीं फंसता है, मतलब वो ध्यान ही नहीं जाता है, जब देखो तब गौतम के संग में लगी पड़ी है, तो उसको लगता है मेरे तरफ कैसे आकर्षित होगी, तो वो हमेशा सोचता रहता है जब ये उससे अलग होगी ना तभी हो सकता है, क्योंकि पतिव्रता है वो, तो इसलिए वो ढूंढ रहा था मौका। तो उसमें बताते, उसमें आज बाबा ने कहा ना मायावी चतुराई, मायावी चतुराई की रात हुई नहीं है, लेकिन मुर्गा बन के बांग दे दिया, ऋषि को लगा सुबह हो गई, वो चल पड़ा और पीछे ही आके घुस गया। अब प्रश्न उठता है, क्या अहिल्या ने उसको पहचाना था या नहीं पहचाना था? जो स्त्री अपने पति के साथ दो युगों तक रही, क्या उसको ये नहीं पता मेरे पति कैसे हैं? पति संयमित पवित्र जीवन वाला, और ये आके क्या कहता है, मुझे शरीर का संसर्ग चाहिए, ये तो योगी जीवन के टोटल अपोजिट है, ये तो भोगी जीवन है। तो क्या उस पत्नी को ये नहीं पता चलता ये भोगी थोड़ी है मेरा पति, तो क्या पहचान नहीं पाई होगी? पहचाना है, लेकिन फिर भी स्वीकृति दी है, और दोनों ने समागम किया, स्वीकृति दे दी, समागम कर लिया, मन संतुष्ट हो गया, कहा अभी जल्दी जाओ लौटेंगे तो हो जाएगी, और जब लौटने की बात आई जल्दी जाओ उतने में वो आ गए थे। अब बताओ ये क्या चीज है, जब दो युग पूरे होते हैं, जब तक दो युग हम जी रहे हैं इन दोनों का गठबंधन अच्छा है, लेकिन जैसे कहा कि दो युग पूरे होते ही सोल कॉन्शियस जीरो पे जाएगा, है ना, मतलब सोल कॉन्शियस निद्रा में चला जाएगा, यही हुआ जीरो पे जाना माना निद्रा पे। अब जब भी किसी व्यक्ति को नींद आती है, डायरेक्ट नींद होती है, पहले थोड़ी आंखें बंद चालू होती है नहीं होती है, ये वो पीरियड है जब आंखें खुली है फिर फिर बंद हो रही है, फिर खुली है। तो उस खेल में ये सब हुआ है, समझ में आ रहा है? ये थोड़ी सी अज्ञानता, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी अज्ञानता, थोड़ा सा ज्ञान। आंख बंद हुई पल पल भर के लिए, लगा एंजॉय कर लो इसको। आंख खुली, होश संभला, अरे ये गलत काम हुआ है, भागो यहां से, और तब का वो श्राप मिला। तो जड़वत होने का श्राप मिला मतलब अब सिर्फ तेरी दिव्यता तेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि सोल कॉन्शियस गया, माना गौतम चला गया ना, गौतम चला गया ना सोल कॉन्शियस, तो बॉडी कॉन्शियस माना, जड़ता वाला ज्ञान, भौतिक ज्ञान माना, तो हमारी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ भौतिक ज्ञान से भरी पड़ी है, और उसी भौतिक ज्ञान के कारण जीवन दुखी हुआ पड़ा है। तब कहा तू, तो उसने भी अपनी गलती स्वीकार की कहते हैं, और गलती स्वीकार की तो उसकी भी सजा कम हुई, और सजा कम क्या हुई कि जड़वत तुम पड़ी रहोगी हजारों वर्षों तक, लेकिन जब राम जी आएंगे, चरण रज पड़ेगी, तब तुम वापस अपने डिवाइन फॉर्म को प्राप्त करोगी। तब तक तुम्हें क्या करना है, तुम दूसरों से अदृश्य रहोगी, तुम्हें सब देख सकेंगे पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, न अन्न मिलेगा न पानी मिलेगा, सिर्फ हवा खाते रहोगी। तो देखो, दो युगों तक किसी ने हमको दिव्य ज्ञान दिया क्या? दिव्य बुद्धि का तो अन्न क्या है, दिव्य ज्ञान मिला ही नहीं हमको, हवा खाते रहे हम, इधर इधर माथा टेको, उधर माथा टेको, ये तीर्थ करो वो तीर्थ करो, ये उपवास करो वो उपवास करो, ये मंत्र जाप करो वो मंत्र, हवा खाते रहे और क्या करते रहे। तो हवा खाते रहो तुम, तुमको अन्न नहीं मिलेगा, तुमको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन तपस्या करो, और तपस्या के फलस्वरूप राम जी तुम्हारे पास पहुंचेंगे। तो दो युगों तक उसको पाने के लिए तपस्या तो की, भले डिविनिटी मिले न मिले पर तपस्या में तो लगे थे, और उसका परिणाम हमारे राम जी आ गए, हमारे राम जी आ गए। और चरण रज छुई का मतलब क्या हुआ, उनके वाइब्रेशंस, योग करते हैं ना, क्या मिलता है, वाइब्रेशंस मिलते हैं, और उस रज से वो पवित्र हो गई। तो प्रश्न यही आ रहा है कि योग से विकर्म विनाश कैसे होते हैं, बस आप योग में उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, उसके वाइब्रेशन में वो ताकत है। ये ऊपर जो कांच के ऊपर जो चिपका चिपका चढ़ा है ना, उसको निकाल के फेंक देता है, और जब वो निकाल के फेंक देता है तो मेरी तो खुद की लेयर है ही, मेरी तो खुद की लेयर, तो मैं वापस डिवाइन बन जाती हूँ, न सिर्फ डिवाइन, संपन्न और संपूर्ण, यही तो लक्ष्य है भट्टी का। तो ये जो एकांत का समय दिया गया वो इसी के लिए दिया गया था, जाओ भीतर, चित्त रूपी कांच के ऊपर देख लो कितनी मैल चढ़ी है, हाँ, कितने छोंक लगाए हैं हमने, हाँ, कभी गुस्सा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो आज भी अगर वो ही चलता रहेगा तो पहले से चढ़ी हुई परत को और मोटा किए जा रहे हैं, और फिर कहो बाबा मुझे मुक्ति चाहिए, तो फिर ये हो जाएगा, गंगाराम नलके पर बैठता है और बोलता है गंगाराम नलके पे नहीं बैठना, हाँ, तो क्या करेंगे अब इस भट्टी से, हम वापस वैसे ही गंगाराम रहेंगे नहीं। तो आज भी समय है आपके पास, शाम का 5 से 6 आपको अपने लिए एकांत का टाइम, पहले दिन भी हमने बहुत समझाया एकांत क्यों चाहिए, हर एक की लेयर अपनी अपनी है, हर एक के घर में किचन में कपड़ा यूज होता है, एक कपड़ा यूज होता है डस्टिंग के लिए, धूल मिट्टी हटाने के लिए, एक कपड़ा यूज होता है पोछा के लिए, और एक कपड़ा होता है किचन के लिए, तीनों को साफ करने के लिए समय एक लगेगा, कौन सा कपड़ा जल्दी साफ होगा, डस्टिंग वाला, पोछे वाला, थोड़ा सा समय लेगा। और किचन वाला, उसको तो पकाना पड़ेगा, सोडा डालना पड़ेगा, स्पेशल डिटर्जेंट डालना पड़ेगा। तो अंदर झांको, मेरा चित्त रूपी कांच, चित्त रूपी कपड़ा कौन सी क्वालिटी का है, और जिस क्वालिटी का है उस क्वालिटी का पुरुषार्थ, यही तो चेकिंग। तभी कहा मैं संपूर्ण हूं ऑलरेडी, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना है कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपन्न बनना है। मैं हूं, मेरा ओरिजिनल क्वालिटी है ना, वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। पर ये जो ऊपर से आया है ना, उसको निकालना है। और इसीलिए अभी काम करना है, जो निगेटिव मेरे प्रैक्टिकल जीवन में कहीं कहीं यूज हो जाता है, जो विचार मेरे निगेटिव चलते रहते हैं, जो भाव ऊपर उठ के आ जाते हैं, काम वहां करना है। तभी वो शिल्पकार की तरह मूर्ति को आप प्रत्यक्ष करोगे। कौन सी मूर्ति? संपन्न और संपूर्ण। तो शाम को ये करना बैठ के, ठीक है? ओम शांति।
तू ही तो बसता,
तुम बिन ओ मेरे।